الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم جماعت، انسانوں کی دو قسم کی کیٹیگریز ہیں، ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے. جو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست سمجھتا ہے، دوست بناتا ہے، اور جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتے. اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتے، اور آخرت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرمائیں گے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ انسانوں میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ملنے کو جی چاہتا ہے، اور بعض لوگوں سے ملنے کو جی بھی نہیں چاہتا، بلکہ اگر وہ سامنے آ بھی جائیں تو انسان کوشش کرتا ہے ان کو اوائڈ کر کے گزر جائے. بالکل اسی طرح اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے. جو غلطی کرتے پھرتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی زمین کیوں نہیں پھٹ جاتی، آسمان سے ان کے اوپر پتھر کی بارش کیوں نہیں ہوتی. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اگنور کیا ہوتا ہے. وہ بھرے بازار میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں، جو جی چاہتا ہے کھاتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسا پہن لیتے ہیں. ایک عرصہ تک ان کو، یعنی ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو اگنور کر دیتے ہیں. سب مجھے کچھ کرنا ہے، یہ بہت بڑی سزا ہے. اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی سزا ہے. حق یوں سمجھے کہ جو آپ کا بیٹا ہوتا ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو باپ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میں اپنے بیٹے کو کھلا چھوڑ دوں. اور اگر وہ فرما بردار بیٹا ہو، پیارا بیٹا ہو، اچھا لگتا ہو، اس کی تو ہر بات پر ہی رکا چینی ہوگی، ہر بات پر اس کو روکا ٹوکا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا بیٹا ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں کرو. بعض اوقات بچپن میں بچوں کو اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی، یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ ہمارے دشمن بن گئے ہیں، ان کو ہم اچھے لگتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. وہی ماں باپ روز پڑوس کے بچہ اگر وہ برا کام کر رہا ہو تو وہ اس کو اوائڈ کر دیتے ہیں. نیچر تو وہی ہے، اپنے بیٹے کے اوپر ہر وقت نکتہ چینی ہوتی ہے. دوسرے کے بیٹے کو دیکھیں گے بھی صحیح، چپ کر کے گزر جائیں گے، ہمارا بیٹا تو نہیں ہے، ہمارے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے، دوسرے مذہب میں ہم کیا کریں، اس کو چھوڑ دیں گے. تعلق کی وجہ سے نکتہ چینی ہوتی ہے، سمجھانا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے، تعلق نہیں ہوتا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اسی طرح انسانوں کا ایک بہت بڑا ہجوم اس دنیا میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. حتیٰ کہ فرعون جیسا ملعون جو ہے، جس نے خدائی دعویٰ کیا، اللہ رب العزت نے اس کو ایسی زندگی عطا کی کہ جس میں اس کو سر میں درد بھی نہیں ہوا، اتنی کھلی چھوٹ دے دی کہ سر میں درد بھی نہیں ہوا، اور اس کی حکومت تھی، وہ لوگوں کو مال دیتا تھا، اس کا لنگر چلتا تھا، لوگ کھاتے تھے پیتے تھے، اور وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں پالنے والا، اور لوگ भी उसको सजदा करते थे, लेकिन जब पकड़ने का वक्त आया तो अल्लाह की पकड़ बहुत शदीद होती है, अल्लाह ने यकदम पकड़ लिया। तो एक किस्म के कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो दुनिया में रहते हैं, अल्लाह ने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। ये लोग अगर इनको हजार साल की जिंदगी मिले, चाहे इससे भी ज्यादा जिंदगी मिल जाए, इनका इरादा होता है कि हाँ मैंने लापरवाही ही करनी है, ठीक होने वाली बात होती नहीं है। चाहे इनको जिंदगी के चंद साल मिले, चाहे हजारों साल मिले, इनका इरादा होता है कि हमेशा अल्लाह की मुखालफत करनी है। लिहाजा जब क़यामत के दिन इस किस्म के लोग पेश किए जाएंगे, अल्लाह ताला ना उनसे कलाम करेंगे और ना ही अल्लाह ताला उनको अपना दीदार करवाएंगे। अल्लाह जमीलन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह तो हसीन है, अल्लाह का मंजर जो है देखना वो तो इतना दिल को खुश करने वाला है। आप अंदाजा करें कि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजों को देखकर कितना जी खुश होता है, कैसे कैसे पहाड़ हैं, कैसे कैसे समुद्र है, कैसे कैसे फूल हैं, कैसे कैसे परिंदे हैं, क्या हुसन अल्लाह ने बनाया। रात के अंधेरे में जो है जगमगाते हुए सितारे, चांद, अल्लाह की शान देखो तो सही, कितना प्यारा बनाया हुआ। तो इन चीजों को देखकर जी खुश होता है। नीले आसमान को देखते देखते सारी जिंदगी गुजर जाती है, आंखें जो है थकती नहीं है। जैसे अजीब अल्लाह ने आसमान बगैर सतून के बनाया हुआ है। तो भाई जब अल्लाह के बनाए हुए नजारे इतने अच्छे हैं तो खुद अल्लाह की मुलाकात कितनी अच्छी होगी, कितनी प्यारी मुलाकात होगी। और जो बंदा इस मुलाकात से महरूम कर दिया जाए कि अल्लाह ताला उससे कलाम भी ना करें, अल्लाह ताला उसको अपना दीदार भी ना करवाए, तो उसका क्या हाल होगा। जन्नतियों के बारे में कहा जन्नत हदन होगी, वहां जन्नत इकट्ठे किए जाएंगे और वहां पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कुरान मजीद पढ़ेंगे, लोग उस कुरान को सुनेंगे और सुनते रहेंगे और इतने खुश होंगे कि उनके सौ साल गुजर जाएंगे। इस कैफियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद पढ़ेंगे और उसको सुनकर फिर एक रवाना लोग बदहोश हो जाएंगे। फिर लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ। फिर अल्लाह करीम खुद कुरान मजीद पढ़ेंगे, जिसका कलाम है वो कुरान पढ़ेगा और सुनने वाले हमेशा के लिए अपना होश खो बैठेंगे। अल्लाह की मुलाकात के लिए जन्नतियों को बुलाया जाएगा वहां जन्नत आदम में और ये मुलाकात नसीब होगी। और आप देखें कि अब लोग जो है उस मजे में खड़े होंगे कि कुरान आज एक कारी कुरान पढ़ता है, बाद बंदा ऐसे लगता है कि दिल धड़कना शुरू हो गया, अजीब कैफियत होने लग गई है। कलाम है, कलाम का असर होता है, अच्छी आवाज में सुने और ज्यादा असर होता है। तो सुभान अल्लाह, जब अल्लाह खुद कलाम पढ़ेंगे तो उसको सुनने का कितना मजा आएगा मेरे भाई। हत्ता के बताया कि उस वक्त महफिल बर्खास्त हो जाएगी, लेकिन जन्नती जाना ही नहीं चाहेंगे, वो नशे में खड़े होंगे। फरिश्ते उनको कहेंगे भी चलो वापस जाओ अपनी जन्नत में, वो जाना नहीं चाहेंगे, खड़े हो जाएंगे, बिला आखिर नूर की जंजीरें पहन के खींचेंगे उनको। लेकिन फरिश्ते डर रहे होंगे कि शहजादे हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, जन्नती हैं, हमारे से कुछ व्याज भी ना हो जाए। अल्लाह ताला से दरख्वास्त करेंगे, या अल्लाह ये तो जाते ही नहीं है। अब यहाँ एक नुक्ता उलमा ने बड़ा अजीब लिखा, कहने लगे कि अगर जन्नती नहीं जा रहा अल्लाह ताला उनसे कहे कि चले जाओ तो इसमें तो बखीरी है ना, कि वो लेना चाहते हैं, उस नजारे का मजा लेना चाहते हैं, उस दीदार को हासिल करना चाहते हैं, और अल्लाह ताला कहे भी चले जाओ, और है भी जन्नती, और जन्नती की तो हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। अब जन्नती को कैसे कहा जाए कि तुम जाओ, तो उनको भेजा भी नहीं जा सकता। और जन्नती जो है वो अल्लाह के दीदार को छोड़कर जन्नत के मजे लेने कहा जाएगा भाई, आप खुद अंदाजा कर लो है? ये भी तो बेवफाई है ना फिर, कि अब वो खाने पीने के लिए और घर और महल और अपनी हुरों के पास जाएगा जिसको अल्लाह का दीदार अजीब हो गया। अब अजीब मामला है, ना अल्लाह भेजते हैं ना जन्नती जाना चाहता है, ये एक अजीब कैफियत है। और फरिश्ते भी इसको जानते हैं इस कैफियत को, कि अब तो बड़ा मसला है भाई, क्या किया जाए। तो अल्लाह ताला से अर्ज करेंगे या अल्लाह क्या करें, अल्लाह ताला फिर अपनी जमाल की तजल्ली को तब्दील करके जलाल की तजल्ली डाल देंगे, क्योंकि अल्लाह के जो है मुख्तलिफ शान है, कभी यूं भी है तो कभी उस तरह से भी है। कभी हमने देखा दरख्तों पर फल फूल लगते हैं और कभी दरख्त नेटो नमूल होकर खड़े होते हैं। अल्लाह ताला काबिज भी है, अल्लाह ताला वासिल भी है, अल्लाह के अंदर जमाल भी है, अल्लाह के अंदर जलाल भी है, मुख्तलिफ शान है, अल्लाह हर लहजा एक नई शान में होता है। तो अल्लाह ताला एक जलाल की तजल्ली वहां डाल देंगे, जो ही वो तजल्ली पड़ेगी रोब दिलों में पैदा होगा, और रोब की वजह से अब जन्नती आहिस्ता आहिस्ता कदम पीछे उठाने लगेगी। और इस तरीके से करते हुए फिर वो अपनी जन्नत के मजों में लग जाएंगे, और फिर अल्लाह बुलाएंगे, जिसकी जितनी मोहब्बत होगी उसको उतना अल्लाह का दीदार नसीब होगा। तो भाई एक तबका वो है कि जिसको अल्लाह ताला ने बता दिया कि ना हम इनसे कलाम करेंगे और ना हम इनको अपना दीदार करवाएंगे, ये महरूम हो जाएंगे इस सआदत से, इस नेमत से, और ये हमेशा के लिए जहन्नम में चले जाएंगे, इसलिए कि इनकी नीयत थी कि हम हमेशा अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। नीयत की बकदर उनके साथ मामला किया जाएगा। कभी के इसके मुकाबले में एक और दुनिया में तबका है जो मानने वालों का कहलाता है, ईमान वाले कहलाते हैं, जिन्होंने अल्लाह ताला को दिन देखे गायब के ऊपर यकीन कर लिया, अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लेकर आए। तो ये ईमान ले आने वाले मोमिनीन मुस्लिमीन जो है सुभान अल्लाह, ये एक और तबका कहलाया। अब इसके अंदर दो किस्म के लोग हैं, एक वो लोग जो भी उन्होंने कलमा पढ़ा, शहादत दे दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो इस शहादत की वजह से इनका एक ताल्लुक बन गया अल्लाह ताला के साथ, एक ताल्लुक बन गया। वो ताल्लुक किस चीज का है कि इन्होंने अल्लाह ताला की अलूहियत को कबूल कर लिया है, अल्लाह ताला को इन्होंने इलाह मान लिया, इन्होंने अल्लाह ताला को इलाह मान लिया। और ये एक फर्क है मेरे भाइयों, ये एक फर्क है अल्लाह ताला को मानने में, ये एक फर्क है कि ईमान वाले अल्लाह ताला की अलूहियत को मानते हैं, अल्लाह ताला को इलाह मानते हैं। दूसरे लोग भी कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, नाम उन्होंने मुख्तलिफ रखे हुए, कोई गॉड कह देता है, कोई भगवान कह देता है, कोई कुछ और कह देता है, लेकिन फर्क यहां पर यह होता है कि वो अल्लाह ताला को इलाह नहीं मानते, समझ गए, वो अल्लाह ताला को इलाह नहीं मानते, यानी वो ये कहते हैं वो गार्ड तो है लेकिन इबादत के लायक नहीं है, ये बुनियादी फर्क होता है। वो इबादत किसकी करते हैं? अपने बुतों की करते हैं, अपने बनाए हुए क्रॉस की कर रहे होते हैं, किसी चीज की इबादत कर रहे होते हैं, गार्ड को मान रहे होते हैं, लेकिन इबादत वो अपने बनाए हुए बुतों की या अपने बनाए हुए सिस्टम की कर रहे होते हैं। और इधर से ईमान वाला क्या कहता है जब शहादत देता है? वो शहादत देने के बाद इस बात का ऐलान करता है कि मैं अल्लाह के सिवा किसी को भी इबादत के लायक नहीं समझता, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मतलब हुआ इसका? कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, लिहाजा ईमान वाला सजदे में पढ़कर सुभान रब्बियल आला कहता है। ठीक है, ये एक बुनियादी फर्क है कि वो इलाह नहीं मानते, वो गार्ड मानते हैं, और वही कमोबेश कॉन्सेप्ट है जो मुसलमानों का है, वो सब कुछ गार्ड करता है, वो सब चीज कह रहे होते हैं, लेकिन इबादत वो अपने बनाए हुए बुतों की करते हैं। और ईमान वाले क्या करते हैं? अल्लाह के सिवा किसी को और इबादत के लायक नहीं। तो शिर्क जाना इनका शिर्क जुल्म अज़ीम, बहुत बड़ा ये जुल्म है, और शिर्क की इजाजत नहीं। इसी तरह बिदात है, बिदात की इजाजत नहीं है, क्योंकि अल्लाह के कानून के मुकाबले में किसी और ने अपनी बात इजाद कर दी। एक अल्लाह का हुक्म और एक है कि बंदे ने अपनी तरह से बना लिया, बंदे की राय है वो, तो ओपिनियन, इसकी भी कोई औकात नहीं है। तो अब यहां बात समझ आ गई कि जब उसने अल्लाह को अपना इलाह मान लिया, वो अल्लाह का बंदा बन गया, अल्लाह उसका महबूद बन गया, अल्लाह ने उसको अपने दोस्तों की फहरिस्त में लिख लिया, अल्लाह वलीजुल्लज़ीना आमन, अल्लाह ने उसको अपने दोस्तों में लिख दिया कि भाई ये मेरा पुजारी है, ये खुद का पुजारी नहीं है, ये मेरा पुजारी है। अब इसको कहेंगे कलमा पढ़ते ही ये बंदा वलायत के अम्मा का हकदार बन जाता है। जो ही 100 साल का काफिर कलमा पढ़ लेता है, इसको ये वलायत मिल जाती है कि ये दोस्ती की कैटेगरी में आ जाता है, दुश्मनों से निकल जाता है, दुश्मनी से निकलकर दोस्ती के अंदर जाता। ये वलायत के अम्मा है, तो बंदा किसी मुसलमान के घर पैदा हुआ, उसको ये वलायत आम्मा की नेमत मिल गई। किसी ने कलमा पढ़ा, उसको ये वलायत आम्मा की नेमत मिल गई। जिसने जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है जी, और उसको ये वलायत आम्मा की नेमत मिल गई। जहां तक बात समझ आ गई। अच्छा, अब दोस्ती में हमने देखा मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे ताल्लुक होता है, मिलते हैं, मुलाकात हो गई, फिर वो जुदा हो गए, बात खत्म हो गई। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दोस्ती में इतने आगे चले जाते हैं कि उनका एक खास मकाम होता है, एक ताल्लुक होता है, इंसान उनको अपने खास लोगों में शामिल करता है। मेरे बड़ा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बड़ा करीबी है, फिक्री यार है हमारी जबान में कहते हैं। तो आप बताओ भाई, ये जिगरी यार बनने वाले दुनिया में कितने होंगे? ये कम होंगे, है ना? ऐसी भाई वाकफियत तो आम होती है, लेकिन खास ताल्लुक रखने वाले खास ही लोग हुआ करते हैं। लिहाजा वलायत से आमा से निकलकर वलायत खासा तक पहुंचना, इसके लिए कुछ मुजाहिदे करने पड़ते हैं, कुछ शराइत है। जिस तरह दुश्मनों की सफ से निकलकर दोस्तों की सफ में आ जाने के लिए इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब करना पड़ता है, गवाही देनी पड़ती है और जुबान से इजहार कर देना पड़ता है कि हम दोस्त हैं, है जी। तो उसके बाद वलायत आम्मा से वलायत खासा पहुंचने तक एक सफर तय करना। और ये जो मेहनत है तसव्वुफ के नाम से, जिसमें बाद लोग कहते हैं कि अल्लाह की मार्फत नसीब हो जाए, अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, ये कोई अजीब और गरीब किस्म की चीज नहीं है। या कोई जाकिरीन जो है गार में बैठकर जिक्र करने वाले कोई मखलूक नहीं है। इसी दुनिया में रहने वाले, इन्हीं गली और कूचे में से गुजरने वाले कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह खास मोहब्बत की निगाहों से देखता हो। अब उसमें शामिल होना और कितना उसमें कुर्ब हासिल करना, ये हर हर बंदे की अपनी जो है जस्तजू है, कोशिश है, मेहनत है। जिसने जितनी मेहनत कर ली, जितना इसको हासिल किया, ये मैदान अल्लाह ताला ने खुला छोड़ दिया। والذین آمنوا اشد حب لله, अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालों के दिल में शदीद मोहब्बत होती है। अब शदीद का लफ्ज बता रहा है कि कोई इंतहा नहीं है, ये मैदान खुला छोड़ दिया। क्योंकि अगर इसमें एक इंतहा पर आके रोक लिया जाता कि बस इतना कुर्ब मिलेगा, इसके आगे नहीं मिलेगा, तो आने वाला भी समझेगा कि भाई देने वाला क्यों नहीं देता, कि मेरी मोहब्बत में शिद्दत है तो आगे कुर्ब में क्यों रुकावट है, वो भी इस चीज को महसूस करेगा। और देने वाला क्यों रोके उसको जो मोहब्बत करना चाहता है, वो तो मोहब्बत का मूजद है, उसने तो मोहब्बत को पैदा किया है। एक बच्चा पैदा होता है, माँ के दिल में मोहब्बत को डाल देता है। अंदाजा तो करो कितनी अजीब बात है, तो वो खुद मोहब्बत के अंदर रुकावटें पैदा कर देगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो अल्लाह ताला ने इसको खुला छोड़ दिया, जितनी मोहब्बत करना चाहते हो आओ मोहब्बत करो। और वाकई अल्लाह की जात ही ऐसी जात है जो मोहब्बत के लायक है, जिससे शदीद मोहब्बत करनी चाहिए। भाई अल्लाह ताला के एहसानात इतने हैं कि हम शुमार नहीं कर सकते, अल्लाह ताला की सिफात इतनी है कि नाम हम उसको समझ ही नहीं सकते। तो मोहब्बत करें तो किससे करें, अल्लाह ताला से करें, है जी। अल्लाह ताला का हुसन इतना है कि वो हुसन को पैदा करने वाला है। तो जिस तरह से भी आप घूमे कि भाई मोहब्बत किससे करनी चाहिए, ये अल्लाह ताला से ही करनी चाहिए। तो ये मैदान खुला छोड़ दिया और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसे लोग दुनिया में हमेशा रहे हैं जिन्होंने अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत की है हमेशा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक ऐसे लोग आते रहेंगे जो अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करेंगे। अल्लाह ताला ने उनके औसाफ कुरान मजीद में मुख्तलिफ नामों से बयान कर दिया। फरमाया कि भाई अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं जो मुहसिनीन होते हैं, अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं जो मुखलिसीन होते हैं, अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं जो मुत्तकीन होते हैं, अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं जो तवाबीन होते हैं। अल्लाह ताला जो है अपने ऐसे बंदों की मुख्तलिफ अंदाज से तारीफें कर रहे हैं। ऐसे लोग जो है सादिकीन होते हैं, और कितनी लंबी लिस्ट है जिसमें उनकी क्वालिटीज लिखी हुई है। कुरान मजीद दुआई दे रहा है, कुरान काबिल अमल किताब है। अगर अल्लाह ताला अमर के सीने के साथ हुक्म देता है या युहल्लज़ीन आमनत्तुकुल्लाह वकूनू महस्सादिकीन, तो सादिकीन का होना तो जरूरी है ना। अगर सादिकीन मौजूद ना हो तो फिर अल्लाह का हुक्म किस तरह डायरेक्शन दे रहा है। अगर कहा जाए भी आप कोई बीमार आदमी खड़ा कहे कि राइट टर्न करो, राइट टर्न ब्लॉक हो, कहेंगे ये कैसे हो सकता है, जब अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि तुम सादिकीन की तरफ जाओ और सादिकीन है ही नहीं। ये तो अजीब सी बात होगी, हम कहाँ जाए, हम तो कंफ्यूज हैं, शक हो गए फिर तो। ऐसा नहीं है कि तमाम क्वालिटी वाले लोग
دنیا میں ہمیشہ سے موجود ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے جب تک قرآن مجید دنیا میں موجود ہے. ایسے لوگ موجود رہیں گے. جس دن قرآن اٹھا لیا جائے گا سمجھ لو کہ بھئی اس دن ایسے لوگ بھی دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے. نہ کعبۃ اللہ برقی رہے گا, نہ جو ہے اللہ کے پجاری رہیں گے, نہ قرآن رہے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو بھی پھر ختم کر دیں گے. اس وقت تک یہ سب چیز موجود ہے اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو الحمدللہ اب دیکھو ان لوگوں کی پہچان کیا ہوگی, ایسے لوگوں کی پہچان کیا ہوگی جو اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے والے ہیں. یہ بات اب سمجھنے والی ہے. تو ان میں سے ایک پہچان بتائی گئی کہ حسرت نایاب ہوگا, ان پر حسرت نایاب کی کیفیت ہوگی. حسرت نایاب جو ہے بڑی عجیب چیز ہے. ایک حسرت ہوتی ہے کہ بھائی مجھے فلاں چیز مل جائے. مثلاً نوجوان ہوتے ہیں, وہ محنت کرتے ہیں, ایک ایجوکیشنل پروفیشنل اچیومنٹ چاہتے ہیں, جب ان کو مل جاتی ہے وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں. پھر ان کو خوبصورت بیوی کی تلاش ہوتی ہے, پھر وہ مل جاتی ہے پھر خوش ہوتے ہیں. پھر اولاد کی تمنا ہوتی ہے, وہ مل جاتی ہے پھر خوش ہوتے ہیں. پھر اسی طرح جو ہے گھر بنانے کی ایک آرزو ہوتی ہے, اللہ ان کو گھر بنانے کی صلاحیت دے دیتے ہیں, گھر بن جاتا ہے خوش ہوتے ہیں. کاروبار چمک اٹھے ہے جی, اچھی جاب مل جائے وہ مل جاتی ہے خوش ہوتے ہیں. اب بچوں کی شادیاں ہو جائیں پھر خوش ہوتے ہیں جی. پھر اس طریقے سے کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ بھائی اس دنیا سے وہ چلے جاتے ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے جی. انسان کی یہی کیفیت ہوتی ہے, خواہشات نہیں ختم ہوتی, چلتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں. چیزیں ملتی ہیں, جب وہ چیز مل جاتی ہے خوش ہو جاتے ہیں, پھر اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. گھر مل گیا اب کہتے ہیں جی کیا ہو گیا, بیوی نہیں تھی بڑے تڑپتے تھے, بیوی مل گئی تمہاری جیسے تو کئی ہے. پھر اور بات ہو گئی, پرواہ نہیں چلتا تھا چل پڑا, اب جی کیا ہو گیا, ہم تو تھے ہی پرانے لطیف رئیس تھے, ہم تو کھاتے پیتے لوگ تھے, کبھی کمی نہیں تھی. کیفیت بدل جاتی ہے, جس چیز کو پا لیا اس کی اہمیت گوا دیا. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو وراء الورا ثم وراء الورا ہے, اتنی بلند بالا ہے کہ انسان اس کو حاصل کرتے 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 کرتے, یعنی یوں سمجھے کہ اس کے مزے پاتے پاتے پاتے, اس کے قریب ہوتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ اللہ تو اتنا بلند ہے, تو اتنا بلند ہے کہ میری یہ حسرت کبھی بھی پوری نہیں ہوگی کہ میں تجھے پورا پا لوں. بھائی اللہ تعالیٰ کی بنائی کائنات سے نکلنا چاہیں, اللہ تعالیٰ کے ایسا کوئی ہم سے وہ بنا لیں شکل, کبھی اس ستارے پہ بیٹھے کبھی اس ستارے پہ چلے جائیں, کتنے سٹار بنے ہوئے ہیں. تو اللہ کے سٹار ہی ختم نہیں ہوتے, آپ کی شکل جو ہے سکتا ہے ساری زندگی گھومتی رہے, آپ وزٹ کرتے رہے کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ خود جو ہے کتنے بلند و بالا ہوں گے, اس چیز کا بندے کو احساس نہیں ہوتا, عام بندے کو اس کا احساس نہیں ہوتا. عام بندہ اللہ تعالیٰ کے اتنے بلند ہونے کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا. جو بندہ اس راستے پہ چلتا ہے اللہ کے قرب کو پانے کے لیے کوشش شروع کرتا ہے, تو جب آپ چلیں گے تو آپ کو رستے کا اندازہ ہوگا, چلے نہیں آپ کو کیا پتا چلے گا رستہ کتنا لمبا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کیلیفورنیا کتنا دور ہے, تجربہ کیا کبھی آپ صاحب سے پوچھے کتنا دور ہے کیلیفورنیا سے یہاں آنا, اس لیے کہ وہ اس سفر کو طے کر کے آئے بیٹھے. हमने ये सफर किया ही नहीं है, लिहाजा हमें इसकी पूरी कैफियत का अंदाजा नहीं है ये कितना सफर होगा, कैसे सफर होगा, किन रास्तों से किन घाटियों से गुजरना पड़ेगा, क्या आएगा इसमें, इसका अंदाजा ही है। जब कोई बंदा अल्लाह की मार्फत के रास्ते पर चलता ही नहीं है उसको इसका अंदाजा ही नहीं होता। बात समझ में आ रही ना, उसका अंदाजा ही नहीं हो सकता। जो इसमें चलेगा इसको इसका अंदाजा होगा और फिर जो है वो एक लेवल पे पहुंचेगा कि ये रास्ता कभी भी तय नहीं। मतलब अगर आप जमीन की गेट चक्का लगाना शुरू कर दें खत्म होगा ये सफर, कभी घूमते रहो ये घूमते रहो कहीं जमीन खत्म हो जाए नहीं होता, बस चल रही है तो चल रही है चल रही। इसी तरह ये सफर भी चलता रहता है, अल्लाह का कुर्ब मिलता चला जाता है, इंसान आगे बढ़ता चला जाता है बढ़ता चला जाता है, और एक वक्त आता है कि इंसान टोटली सरेंडर कर देता है और कहता है ये हसरत नायाब है। सूफिया कराम ने इसको कहा कि ये हसरत नायाब है कि इसके न पाने की एक कमी और हसरत है ना, ये बस रह जाती है, बाकी जिंदगी खत्म हो जाती है और ये सफर चलता रहता है। हजरत अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो माशाल्लाह आशिकों के सरदार थे, सहाबा की जमात के सरदार और अल्लाह रसूल अल्लाह से हद से ज्यादा मोहब्बत करने वाले, वजह क्यों क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, सहाबा तो सारे थे, सब अल्लाह से मोहब्बत करते थे और सभी रोजेदार सभी नमाजें पढ़ने वाले सभी इबादत करने वाले, तो फिर ये चार यार क्यों कहलाते हैं, बाकी भी तो यार थे ना, उन सब यारों में से ये चार यार इसलिए थे कि इनके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह की मोहब्बत की शिद्दत, जिसकी वजह से इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता था और इस वजह से इनको जो है यारे गार कहा गया। ये जो मकाम मिला हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी फरमाया करते थे मेरी सारी जिंदगी की लेकियां ले लो और मुझे ये तीन रातें दे दो, जिसकी तारीफें अल्लाह कुरान में करते हैं कि ये माइयत था, ये मकाम माइयत जो है, ये कुर्ब जो है, ये क्लोजनेस जो है, ये इबादात से ताल्लुक नहीं रखती बल्कि ये एक ताल्लुक है, एक मोहब्बत का एक मकाम है और ये उसकी उससे इसका ताल्लुक है और ये कल्ब की कैफियत है, ये न रोजों से न नमाजों से न किसी और चीज से, कल्ब की कैफियत से है और इसको कहते हैं वलायत खासा, बल्कि ये निस्बत इत्तहादी है कि उन वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे हो गए कि दोनों को जुदा भी नहीं किया जा सकता, वो ऐसे अटैच हो जाते हैं। ये जितना योग समझे करीब आते 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 ऐसे हो गए, बिल्कुल आपस में बिल्कुल मिक्स हो गए। उसकी दलील यह है कि जब हजरत मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो रहे हैं, मदीना मुनव्वरा वाले पहचान ही नहीं कर सके कौन नबी है और कौन उम्मती है, इतना आपस में यूं मिक्स हो गए, ऐसा कुर्ब हासिल हो गया कि जो है देखने वाले देख ही न सके, पहचान ही न सके कि कौन नबी है और कौन उम्मती है। बिल्कुल तो बहरहाल बताने का मकसद यह है कि हजरत अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु भी ये फरमाया करते थे कि ये अल्लाह ताला ने जो है अपनी मारफत को जो है इबादत की बजाय जो है आजी में रखा है, इबादत की बजाय आजी में रखा, यानी अल्लाह की मारफत क्या है, मारफत कहते हैं पहचान को, अल्लाह को जानना, जो बंदे ने अल्लाह की मार्फत को हासिल किया है यानी पहचान लिया अल्लाह ताला को, तो हकीकत में क्या पहचाना, कहते हैं तुम अपने आप को पहचान जाओ तो अल्लाह को पहचान जाओगे, क्या मतलब कि तुम अपने हकीर होने को पहचान जाओ, जब तुमने अपने आप को हकीर समझ लिया पूरी तरह तुम खुद बहुत समझ गए अल्लाह तू बहुत बड़ा, बजाय इसके कि अल्लाह कितने बड़े हैं इसकी पहचान में लगो, इस बात की पहचान करो कि मैं कितना गंदा हूं। और ये फर्क होता है अल्लाह वालों का, जो वो अपने आप को पहचान दे, अपने गंदे होने को पहचान लेते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने अजीब बात कहते थे कि जिस बंदे के पेट में गंदगी हो भाई, वो कभी बड़ा बोल बोल सकता है? बड़ी बात क्या है? अल्लाह ताला बंदे को रोज सिखाते हैं कि तेरी सोबत में रहने वाला जो खाना था खुशबूदार, वो बदबूदार बन के निकला, तो क्या चीज है? ये बात बंदा पहचान ले कि मैं गंदा हूं, ये बात उसको समझ जाएगी। और यही फर्क होता है अल्लाह वालों का, तो वो इस बात को पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमारी कोई औकात ही नहीं है, सब कुछ ऊपर से होता है, सब अल्लाह का। इसीलिए ये लोग मुसलसल अल्लाह का नाम लेते रहते हैं, इनकी नजर हमेशा अल्लाह पर होती है, इनका दिल हमेशा अल्लाह से जुड़ा होता है, क्योंकि इनके अपनी आप को ये जीरो समझ चुके होते हैं। इसलिए आप इनसे बात करेंगे हर बात में अल्लाह, हर बात में अल्लाह, हर बात में अल्लाह, हर बात में अल्लाह, लोगों ने इनका नाम रख दिया अल्लाह वाले हैं, जैसे सब्जी वाला होता है, नारे लगाता रहता है सब्जी 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 सब्जी, अल्लाह अल्लाह वाला उसी को कहते हैं जो हर वक्त अल्लाह की बात करता है, हर जगह पर अल्लाह की बात करता है, हर मामले में अल्लाह की बात करता है, ये अल्लाह वाला कहना है। तो अब यानी यूं समझ लें कि इनकी पहली निशानी क्या हुई, कि ये हसरत नायाब, अगर बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि जो कुछ देखा गया इस रास्ते में चलते हुए, अल्लाह ताला जिक्र की हलावत देते हैं, कैफियात देते हैं, तो वो फरमाया करते थे कि इस रास्ते में चलते हुए जो कुछ देखा गया, सुना गया, पाया गया, सब उसका गैर है, इसको कलमा ला के तहत ला कर इसकी नफी कर देना चाहिए। हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं ना, तो उसमें वो कहते हैं कि जो कुछ भी इस रास्ते में चलते हुए, जो कुछ भी आपने जो जिक्र की हलावतें नसीब हुई, इन सब को कलमा ला के तहत ला कर इसकी नफी कर देना चाहिए। अगर हम कोई रंग कैफियत वगैरह देखे तो वो सब अल्लाह का गैर है, वो अल्लाह नहीं। बाद लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं, सूफिया के पास बाद लोग इस नीयत से आते हैं कि हम कोई करामते देखें, हम कोई जो है जिक्र की हलावत और जिक्र के मजे और जिक्र की बातें और ऐसे ऐसे अशार और ऐसी ऐसी चीजें करते हैं। तो हमारे सिलसिले के इमाम हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं कि जब कलमा पढ़ लिया तो ला कलमा ला के साथ इन सबको काट गया, हमारा इससे ताल्लुक ही नहीं है, ये कैफियात आती रहेगी जाती रहेगी, क्या हो गया? सही देखिए ना, आपने इरादा किया कि मैंने हज करना है इस साल, अब हज के लिए आप निकले और एयरपोर्ट पे आपने देखा ड्यूटी फ्री शॉप है, बंदा खड़ा हो जाए और शॉपिंग में लग जाए और जहाज निकल जाए, है क्वेश्चन वाली बात कि मंजिल पे जहां पहुंचना है जिस उसको छोड़ दे मकसद को और शॉपिंग ही करते चले जाए, हालांकि खूबसूरत दुकानें बनी हुई है, क्या क्या माल पड़ा हुआ है, क्या क्या चीजें हैं, उधर तवज्जो ही होती, लेकिन चीजें तो नजर आ रही होती है ना। आप जा रहे हैं, आपका जो है टारगेट है कहीं किसी खूबसूरत मुल्क में, कहते जी यहाँ तो बड़े अच्छी पॉइंट है, बड़ी जबरदस्त जगह है, वो कहे चलो मैं कुछ दिन यहाँ स्टे कर लेता हूँ, ये जरा मुल्क देख लूंगा, घूमूंगा, जहाज पे आया हूँ यहीं से तो गुजर रहा हूँ और हज का सीजन गुजर जाएगा, पहुंचना तो हज पे था, ये वहां पर फिरता रहा फिरता रहा फिरता रहा। भाई बैठे हैं जिक्र के लिए, मुराकबा के लिए, कैफियात आ रही है, नजारे हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा हो, तो हमने अब्दुल लुत्फ थोड़ी बन जाना है, तो ये बड़े मजे आ रहे हैं। और अल्लाह की तरफ से ध्यान हटाकर अब इन मजों में लग गए। फिर किसी दिन मजा ना आया तो ऐसे अब्दुल लुत्फ जो है ना वो फिर परेशान बैठे होते हैं, कहते जी आप तो वो बात ही नहीं है। फिर इस बात से परेशान हो रहे थे, और जी बस मेरी कैफियत ही नहीं, छोड़ो पर मैं जिक्र करता ही नहीं हूँ, फिर जिक्र छोड़ देते हैं। और यही शैतान से चाहता है। पर अल्लाह ताला भी इसी तरह बंदे को आजमाते हैं, कभी मजे दे रहे होते हैं, देखे ना नमाज हम पढ़ते हैं, कभी नमाज में बड़ा मजा आता है और कभी नहीं भी आता। हम नहीं आया मजा, हम नमाज थोड़ी छोड़ देंगे। बाद लोग कहते हैं पहले भी नहीं बड़ा मजा आया करता था, अब नहीं आता, लिहाजा अब दिल ही नहीं करता नमाज पढ़ने को या जिक्र करने को, दिल ही नहीं चाहता, कुरान सुनने को मजा नहीं आता, अब तो आप कुरान नहीं सुनते। ये शैतान का प्रगणन है, और अल्लाह ताला उसको आजमाते हैं कि ये असल में मेरा तलबगार है या मजों का तलबगार है। आप किसी दोस्त के पास जाएं और वो अच्छे अच्छे खाने खिलाता हो, और किसी दिन आप गए और वो कहीं मसरूफ था, उसने खाना नहीं खिलाया, दो तीन दफा खाना ना खिलाए, छोड़ो यार ये तो बदल ही गया। तो जो खाने वाला दोस्त, या इसको और मिसाल से समझाऊं, बाल लोग ऐसे होते हैं दीनी प्रोग्राम करते हैं मस्जिदों में, है जी, और देगे पकाते हैं, मजे मजे के खाने खिलाते हैं, हलीम पकी हुई है मजे की, वो जनाब फिर देखेंगे कैसे रश होता है, इंतजार में बैठे थे कब मौली साहब ध्यान बंद करेंगे खाना मिलेगा। खाने के तलबगार होते हैं, ध्यान के नहीं होते, आते ही मजेदार खाने के चक्कर में वो ढूंढते हैं यार किधर मजेदार खाना है। माँ बाप अगर वही बच्चे खाने पकाना या उनका कुक बदल जाए तो खाने मजेदार ना पकने लगे, आबादी कम हो जाएगी। वजह क्या थी, ये अल्लाह के घर नहीं आ रहे थे बल्कि इनका मकसद कुछ और। अल्लाह ताला इसको देखते हैं बंदे से, ये असल में बैठा जिक्र मजे के लिए कर रहा है या वाकई ये यही इबादत कर रहा है। हमने बात पूरी तरह क्लियर हो गई है ना, हर विचार से समझाने की कोशिश की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कैफियत बहरहाल नहीं होनी चाहिए। बंदे का ये आजिज हो जाना कि वो अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता, यही अल्लाह की मार्फत है, और इसी को हसरत नायाब कहते हैं। तुझसे तुझी को मांग कर सब कुछ मांग लिया, सौ सवालों से यही एक सवाल अच्छा है। तो दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, तो दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, मैं जान गया बस तेरी पहचान जी। अगर अल्लाह ताला भी समझ में आ जाए हाँ जी, तो फिर तो अल्लाह ताला महदूद हो गए ना। अल्लाह ताला की जात की जो पहचान है वो क्या है कि जिसकी पहचान ही ना कर सकती, क्योंकि जो मैंने जैसे कहा कि बलायत खासा जो हासिल करना चाहते हैं वो खास ताल्लुक चाहते हैं, वो तो फिर पूरा पहचानना चाहते हैं ना। तो पूरी पहचान का न होना, हसरत नायाब हो जाना, यही अल्लाह की पहचान है। तो बाल लोग इस चक्कर में होते हैं कि भाई आखिर इसकी इंतहा क्या है, इसकी इंतहा क्या है कि हसरत नायाब का पैदा हो जाना, या अल्लाह इतना बड़ा है और मैं इतना छोटा हूं, मैं इतना छोटा हूं, इस चीज का जो है बंदे को कैफियत का हासिल हो जाना। अब दूसरी पहचान, दूसरी पहचान यह है कि जिस बंदे का अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक हो जाता है उसका बाकी सबसे ताल्लुक टूट जाता है। समझ आ रही है? जिसका अल्लाह ताला से ताल्लुक जुड़ जाता है सही मायने में उसका बाकी सारी मखलूक से ताल्लुक टूट जाता है, इसको कहते हैं इनकता अल मखलूक हो जाता है। समझ की दुनिया में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है ये इनकता, कता हो जाना, खत्म हो जाना अनिल मखलूक, तमाम मखलूक से उसका दिल टूट जाता है, खत्म हो जाता है, फकत अल्लाह के साथ ताल्लुक जुड़ जाता है, अल्लाह के लिए अल्लाह के मखलूक से ताल्लुक जुड़ जाता है। अगर अल्लाह राजी है तो फिर जो है ये काम करूंगा, ये ताल्लुक रखूंगा। लोग कहते हैं कि मैं अपने बच्चों के पेट पालने के लिए हराम काम करता हूँ, ऐसे कहते हैं ना कि ये मैं क्या करूं, मैंने रोजी रोटी करनी है, बच्चे का पेट पालना है, लिहाजा मैं हराम जाप कर लेता हूं। लेकिन ये दोस्ती की अलामत नहीं है। दोस्ती की अलामत क्या है कि अगर अल्लाह नाराज होते हैं तो बस फिर खत्म। अब चाहे बेटा सामने आ जाए, चाहे प्यारी बीवी सामने आ जाए, प्यारा दोस्त सामने आ जाए, है जी, इंसान का माल पैसा सामने आ जाए, इंसान की इज्जत और उसकी शोहरत सामने आ जाए, सब चीजों को साइड बदल देगा, कहेगा अब मेरा अल्लाह से ताल्लुक है। हत्ता के अगर ऐसा वक्त आ जाए कि अपने आप भी कुर्बान कर देना पड़ जाए तो वो भी कर देना, ताल्लुक ही कुछ और हो गया, अपनी जान को भी भेड़ मिटा देता है, अपने आप को खत्म कर देता, ना मैं ना कोई और, इसको कहेंगे इन कता अनल मखलूक हो जाएगा। अल्लाह के साथ ऐसा हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आ गया, अब तो खलबत हो गई, अब तो तन्हाई हो गई, अब तो आ जा, तो ये कैफियत उसको नसीब हो जाएगी कि अब उसके पास से बाकी सब खत्म हो जाएगा। बीबी रानी अबसरी के सामने किसी ने दुनिया की शिकायतें की, ये दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है। कुछ देर बाद बीबी ने कहा लगता है तेरे दुनिया से बड़ी मोहब्बत है, कैसे? इसलिए कि तू दुनिया की बहुत बातें कर रहा है, जिसकी दिल में ही नहीं है उसकी क्या बात की जाए, दुनिया आ रही है, दुनिया जा रही है, ड्यूटी समझ के तो एक काम करना और चीज है, लेकिन उसकी तमन्ना और उसकी मोहब्बत और उसकी जुस्तजू में लगना ये एक और चीज है। ड्यूटी करेंगे इसलिए करेंगे अल्लाह का हुक्म है, कार में नहीं बैठेंगे, मेहरबानियत भी अख्तियार करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन दिल अल्लाह के साथ जुड़ा रहेगा, ताल्लुक रहेगा। ये एक चीज जो है अलामत है अल्लाह की मार्फत का हासिल हो जाने की, ये अलामत है। अब अल्लाह ताला क्या, देखो ये वलायत खासा का हासिल करना, बहरहाल अल्लाह ताला इसको हर मोमिन के दिल में इसकी तमन्ना को पैदा करे, इसके हासिल करने के लिए हत्ता इज़ा वाक़त अलैकुमुल अर्ज़ बिमा रफ़अत, जमीन अपनी पूरी फराखी के बावजूद तंग कर दी जाती है, ये घाटियों से गुजर कर ये रास्ता तय किया जाता है, कुछ तकलीफें कुछ परेशानियां उठानी पड़ती हैं। एक मरतबा लैला ने कहा कि अजमाऊ के मजनू असली है नकली है, जी लैला क्या करती थी, कहानियां बनी हुई समझाने के लिए, लैला ने हकीकत क्या है, उसको किसी ने बताया कि भाई वो मजनू जो है वो तो बेहाल मलाजे का रखा हुआ। तो उसने कहा भाई चूरी बनाकर बेहतरीन मीठा चिट्ठा और उसमें ये चीज डालकर निराशिक है वो लेता मजनू खाता चूरी है नी? रोजाना भेजती चूरी उसको और वो खाता। एक दिन उसको दिल में ख्याल आया कि ये असली मजनू भी है कि मैं ऐसे भेज रही हूँ। उसने वो जो प्यारा लेके जाती थी चूरी का उसको उन्होंने कहा कि ऐसे करो आज जाना और मजनू को कहना कि इसको फोन से भर के दे दो अपने। तो वो जिसके थ्रू कासिद के थ्रू जब गई उन्होंने कहा कि भाई वो तो लैला ने कहा कि इसमें फूल का आज प्याला भर के देना है। रोज तो आती है चूरी भर के आती थी। तो उसने कहा मैं तो चूरी खाने वाला मजनू हूँ खून देने वाला मजनू उधर बैठा हुआ है। तुम तो रोज चूरी मेरे पास लाई मैं तो चूरी खाने वाला मजनू खून देने वाला उधर बैठा उससे जाके ले लो वो लैला के लिए मैं तो चूरी खाऊंगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चूरी खाने वाले होते हैं। अल्लाह आजमाते हैं कि असली मजनू है या नकली मजनू है। लिहाजा अल्लाह ताला उनके ऊपर क्या करता है मुसीबतों को तकलीफों को उनके ऊपर डाल देता है। जिस बंदे ने इन तकलीफों को और इन मुसीबतों को गले न लगाया तो फिर अल्लाह ताला ने उसको अपनी वलायत खासा का मकाम नहीं दिया। आप देखे ना आप दोस्ती ताल्लुक होती है आदमी कहते चलो ठीक है लेकिन जो खास होता है अगर वो जरा चीज खराब करे आपने जरा हार्ट अटैक दिया उसको आगे से उसकी आवाजें आने शुरू हो जाए बता क्या कहता है झूठा ऐसे कहते ना बड़ा यार बनता था मेरा आज मेरी मुश्किल का वक्त खड़ा ही हुआ ये यारी है तेरी। एग्जैक्टली शेख को अजमाता है या यूं समझे कि अल्लाह जब अजमा रहे होते हैं शेख अपनी आंखें खुली रखता है दोनों तरह। बाज शेख मुसीबत भेजता है इस तरह से कि मैं उसको अजमाया मुसीबत तो नहीं शेख भेज सकता अल्लाह भेजते हैं जो दूसरी टर्मिनोलॉजी में लेकिन अजमाते हैं देखते हैं यार जरा इसको हार्ट अटैक देके देखे जरा करता क्या है। जब उसकी चीज चलना शुरू होती है तो चल जाता है कि झूठा है बच्चा नहीं है। और दूसरे तरीके से जब उस पर मुसीबत अल्लाह की तरफ से आती है तो शेख आंखें खुली रखता है इस मुसीबत में से आप निकल कैसे रहा है उसको देखते हुए वो उसको समझता है। देखो आखिर कोई साइंस तो होगी ना शेख के पास कोई जादू तो नहीं है ना जी इसलिए वो साइंस पढ़ी हुई है। ये समझे जैसे मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ डॉक्टर के पास वो साइंस पढ़ी होती है कि वो मरीज का मर्ज को पहचानता है। ये देखो भाई पढ़ रहा है ना क्या कर रहा है वहां क्या करता है मेहनत कर रहा है ना क्या पढ़ रहा है यही पढ़ रहा है कि बीमारियों की पहचान। हमने अपने शेख के साथ रहकर जिंदगी गुजारी हमें पता नहीं चला लेकिन उन्होंने हमें ये सबक पढ़ा दिया था इसकी पहचान करो कि सच्चा आशिक कौन है और झूठा आशिक कौन। अगर हम मजमा लगाने वाले होते तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दफ्तर में आज भी रोजाना 100 बंदे से ऊपर आता है। जब आम पेट के दर्द वाला 100 बंदा मेरे पास आ जाता है तो दिल के दर्द वाले कितने इकट्ठे कर सकता हूं। तकनीक आती है ना ऐसी बात तो नहीं है कि तकनीक नहीं आती तकनीक आती है लेकिन हमने ऐसे सिर्फ दर्द इकट्ठे नहीं किए होते। हम भी चाहते हैं कि आशिकी करीब आए सिर्फ दर्द वालों को क्या करेंगे सच्चे आशिकों की तलाश होती है कि वो ही आए उन्हीं के साथ हम भी रहें और हम भी इंजॉय करें है जी। वरना मजबे लगाने वाले तो मेरे पास हर कुछ दिनों बाद आए बैठे होते हैं कि जनाब आप हमें ये मंत्र सिखाए तो वो जंतर सिखाए और फला करें और हम भी उनको दिखाते हैं दरवाजा खुला हुआ है चलते नजर आए। ऐसे तो बड़े बड़े लाभे मेरे पास आते रहते हैं जेल काबू करने हैं, और मैंने कहा भाई जेल काबू करोगे किसे नाराज हो तेरे पे चढ़ जाएगा। और दूसरी बात है कि अभी ऐसे बंदे के पास जाओगे है जो जिन उतारेगा, भाई उतारना जिसको आता है चढ़ाना भी तो आता होगा ना, ऐसे अमलियात वाले के पास तुम जाओगे जो जिन निकालेगा वो पहले वाले निकाल के बोतल में रखे हुए उसने, अगर उसने बोतल का ढकना यूं तुम्हारी तरफ खोल दिया तो अरे पे चढ़ ही जाएगा। ऐसे बंदों के पास नहीं जाते होते, मैं उनको समझाता हूँ इनसे परहेज, अमलियात वालों के पास नहीं जाना, अल्लाह को राजी करना, अल्लाह को राजी करना। तो अब बताने का मकसद ये था कि देखो जो वासिल बिल्ला होता है, जो अल्लाह ताला का कुर्ब पा जाता है, उसकी अलामात बता दी कि एक तो वो हसरत नायाब होता है, और दूसरा मखलूक से वो कट जाता है, और तीसरी चीज ये है कि वो अल्लाह ताला से जुड़ जाता है। और जो अल्लाह ताला से जुड़ जाता है वो क्या करता है, उसके अंदर जुहद होता है, तकवा होता है, इत्तबाए सुन्नत होती है, और याद इलाही उसके अंदर दाइनी पैदा हो जाती है, हर वक्त अल्लाह की याद, हर वक्त अल्लाह की याद, बुलाना चाहे बुलाना चाहे सके, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنب, खड़े हुए बैठे हुए लेटे हुए वो याद इलाही में रहता है। ये है कैफियत जिसको हासिल करने से वलायत खासा मिल जाती है। आज का उन्वान क्या था, वलायत आमा से निकलकर वलायत खासा तक कैसे पहुंचे, इसी का नाम अल्लाह की मारफत है, इसी का नाम अल्लाह का कुर्ब है, इसी से अल्लाह राजी होता है, और यही नेमत है जिसको पाने के लिए अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा। देखो कितने खुश नसीब लोग होते हैं जो पैदाशी मुसलमान होते हैं, है ना, उनको अल्लाह ताला ने एक इनाम दिया होता है कि शुरू से वो जो है वो एक अल्लाह ताला ने उनको अपनी वलायत दी हुई है, कुर्ब दिया हुआ है। आप बताओ भी ये करने वाला काम है कि नहीं करने वाला, आप बताओ, ये कोई पीरी मुरीदी या कोई एक वो नहीं है, दुकान नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो जिसकी जिसके लिए कुछ किया जा रहा है, बल्कि ये क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इंसान की जरूरत है, उसने उसकी जिंदगी पाई इसीलिए है, उसी के लिए इबादत है, उसी के लिए सारी मेहनतें हैं। लेकिन कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी कि बंदा कहेगा या अल्लाह ये क्या हो गया, इतनी मुश्किल आ गई है, हत्ता इज़ा ज़ाहत अलैकुमुल अर्ज़ बिमा रहमत, ऐसा लगेगा कि दुनिया में जिंदगी टाइट हो गई है, उसे चलते रहना चलते रहना चलते रहना, छोड़ना नहीं है, इसको तकलीफें परेशानियां इसमें आएंगी। बाहर हज़रत हाजी दादुल्ला महाजर मक्की रहमतुल्लाह ने हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुंगरी रहमतुल्लाह से पूछा कि क्या आपने इश्क मोहब्बत की दुकानें देखी हैं, इश्क मोहब्बत की दुकानें देखी हैं, उन्होंने अर्ज किया देखी हैं, एक हज़रत शाह आफाक रहमतुल्लाह की दुकान देखी और दूसरी हज़रत शाह गुलाम अली मुजद्दिदी रहमतुल्लाह की दुकान देखी। दो बुजुर्गों के नाम बताए कि इनके महफिल इनकी मजलिस में हमें ये अल्लाह ताला की मोहब्बत और ये चीज जो है नसीब होती है, इसके लिए आखरत की जो है याद रखना, दुनिया से हटना कटना, ये जो है इस कैफियत को हासिल करने का एक तरीका है, और इसके साथ साथ जो है अल्लाह वालों की सोबत में आना, जिसकी वजह से आज देखें कि आज भी वहां से उठ के यहाँ आ गया, और ये कितने सारे दोस्त अहबाब जो हमारे वहां रहने वाले थे वो भी यहाँ आके बैठे हुए। मकसद क्या है कि भाई एक सोबत है, एक वक्त है, अच्छा गुजार है, वरना हमारे पास भी वहां पर जगह थी, हम वहां बैठ जाते, तो इस जगह पर आए। अब यहाँ के इलाके वालों के लिए भी जरूरी है कि वो भी तवज्जा फरमाए, दुकान खुल गई है, सौदा लेने वाला नहीं आएगा, یہ اللہ کا ایک نظام ہے, اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کا وقت ضائع نہیں کرواتا, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا وقت ضائع نہیں کرواتا, جہاں طلب ہوتی ہے اللہ وہاں بھیج دیتا ہے. یہ ذاتی اگر کام ہے خدا تقسیم کرتا ہے. ہمارے حضرت الحمدللہ کم و بیش 35 ملکوں میں مختلف شہروں میں جا کے انہوں نے کام کیا, ہر جگہ اس قسم کے ادارے, اس طرح کی جو ہے مجلسیں منعقد ہوئی اور ہو رہی ہیں آج بھی. تو الحمدللہ وہ کیا کر رہے ہیں, یہ عشق و محبت کی داغ کو تقسیم کر رہے ہیں, طلبگاروں تک اس کو پہنچا رہے ہیں. کبھی یہاں محنت کر رہے تھے, جس کے نصیبوں میں جتنا تھا ان کو دے دیا, پھر وہاں اور جگہ چلے گئے, جتنا ان کے نصیبوں میں تھا ان کو دے دیا, پھر اور جگہ چلے گئے, پھر ان کو دے دیا. تو اس طرح جب دکان کھل جاتی ہے تو جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں, جو غافل ہوتے ہیں وہ وقت ضائع کر دیتے ہیں. اب ہم کہیں وہ بہارے پھر آ جائیں, آ جائیں گے, گزر گئے جو وقت گزر گئے, جن آنکھوں نے وہ نظارے دیکھے ہیں ان سے پوچھیں کہ کیسی بہاریں تھی, آپ کو بتائیں گے, وہ گزر گیا وقت. اس لیے اب یوں سمجھے اس کو نعمت سمجھ لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں, اور اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی سمجھائیں بتائیں کہ بھائی شکر گزاری کر لو کہ بھائی اللہ تعالیٰ کسی کو بھیج رہا ہے, یوں سمجھے چانس مل رہا ہے, ایک بار پھر چانس مل رہا ہے. اگر غفلت کرتے رہو گے اللہ پاک کہیں اور مصروف کر دے. حضرت تو پہلے سے زیادہ مصروف ہوتے گئے نا, یہ تو نہیں ہے کہ یاد گئے تو فارغ ہو کے بیٹھ گئے, ایسا نہیں ہوا, اور زیادہ مصروف ہو گئے. تو اس لیے بہرحال یہ چیز ایسی جگہوں سے ملتی ہے الحمدللہ, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس محنت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.